أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم؟ क्या उन्होंने देखा नहीं जमीन की तरफ के कितनी कसरत से हमने उगाए हैं इसमें हर तरह के मुफीद पौधे। जौजिन करीम, जौज किस्म को भी कहते हैं और स्पाउस को भी कहते हैं, यानी मुजक्कर और मोनस को भी और डिफरेंट काइंड्स को भी। यहाँ मानी है सिंफ के, यानी मुख्तलिफ किस्म के, वैरायटी। और करीम बाफायदा, करूमा से, बड़ी फ़ायदे वाली, नरम, जिसमें दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुमने ज़मीन को नहीं देखा कि इतना कुछ हम पैदा करते हैं, इतनी खूबसूरत चीज़ें उसके अंदर ले आते हैं, और इसके बावजूद भी लोग अल्लाह की कदर नहीं करते, निशानियाँ मांगते हैं। क्या ये निशानी नहीं है जो ज़मीन में सरसब्जों खेत उगे हुए हैं, सरसों के कहीं खेत हैं और कहीं गंदम है और कहीं कपास है? क्या तुम्हें अल्लाह ताला की ये चीज़ें निशानी नहीं लग रही? अगर ये ना होती ना तो इन्होंने कहना था हाँ अल्लाह के नबी वो हमें सरसों उगा के दिखाएं, हमें बताएं। कोई मकई भी उग सकती है, अच्छा कोई एक ऐसी चीज़ उगा के दिखाएं जिसके बीच में एक लंबा सा उसके अंदर खोखली सी चीज़ और उसके चारों तरफ छोटे छोटे दाने जुड़े हों। सिर्फ आप मकई को देख लें, कॉर्न को देख लें, क्या उसको देखने के बाद भी कोई अल्लाह की कुदरत का मुजाहरा चाहता है? कोई उसकी ज़रूरत पड़ती है? लेकिन आज दुनिया में देखिए कि चारों तरफ अल्लाह की कुदरत की चीज़ें दिखेंगी, लेकिन इंसान फिर भी उस वक्त यही सोच रहा होता है कि अच्छा कोई फरिश्ते उतरे, यानी नामुमकिन चीज़ होती भी देखे जो है उसको तो हम कोई बड़ी चीज़ ही नहीं समझते। कहा नहीं, ये छोटी चीज़ें नहीं हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। मत अपने मुँह से अल्लाह के अजाबों को मांगो, तुम अपनी तबाही का घड़ा खुद ही खोद रहे हो। तुम्हें पता चल जाएगा जैसे ये सब कुछ होगा कि तुम्हारा हाल क्या होगा। यहाँ जो लफ्ज़ है ना कम, हाउ मच, कैन, कसरत के लिए आता है, और कुल कसरत के अहाते के लिए आता है, यानी कितनी ही किस्म की हमने दी, पहले कम के लफ्ज़ से बताई और फिर कुल्ली ज़ौजिन करीम में बता दी कि अहाते में आनी मुमकिन नहीं है, इतनी प्यारी चीज़ें रख दी। इन नफी ज़ालिकल आया, बेशक इसमें कुदरत इलाही की निशानी है। गौर करो, अब ये आयत आप देखेंगे कि 8 दफ़ा दोहराई जाएगी। वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, लेकिन अक्सर ईमान नहीं लाते। सच है कि झूठ? अक्सरियत का हाल क्या है? मानते ही नहीं है। वइन्ना रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और बेशक आपका रब ही सब पर गालिब और नहायत रहम फरमाने वाला है। जितनी अटकलियाँ करते हैं अल्लाह ताला इतनी इनको मोहलतें दे रहा है। अगर वो रहीम ना होता तो उसका अज़ीज़ होना कब तक इनको पकड़ चुका होता। यहाँ तक तमहीद बांधी गई, अल्लाह के नबी के सामने जो लोग थे उनको डराया गया कि गौर करो, सोच लो, तुम ये जो क्या कर रहे हो हर वक्त जो इस नबी से मुतालबे करते हो, तो कल कहीं ऐसा ना हो कि जब वो मामला पेश किया जाए तो तुम उसकी पकड़ को देख ना सको, उसको बर्दाश्त ना कर सको। अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना कुछ दिया और तुम उसकी कदर नहीं करते। अब इसके बाद आयत नंबर 10 से लेकर 68 तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में पेश आने वाले जो मुख्तलिफ़ वाक़ियात थे तकरीबन तरतीब ही के साथ यहाँ पे बयान किए गए। थोड़ी थोड़ी वजाहत की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे इसमें हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत देने का तरीक़ा दिखेगा कि कैसे उन्होंने फ़िरौन को दिया। और असल में यहाँ अल्लाह के नबी सल्लम को कहानी सुनाई जा रही है। आप कह रहे हैं कि स्टोरी टाइम है। जब बच्चा बहुत दुखी होता है ना, उसको चोट लग जाती है, उसकी उंगली में खून निकल आता है, फिर माँ उसको कहानी सुनाती है। वो तुम्हें पता है एक चिड़िया थी, कौवा था, ये था वो था, फिर कहानी सुनते सुनते बच्चे को अपना गम याद नहीं रहता। बिल्कुल कुरान पाक का कहीं कहीं अंदाज इतनी ही शफीक माँ वाला बन जाता है। अल्लाह के नबी के दिल पे चोटें पड़ रही हैं, लोग आपको मजनू, काहिन, दीवाना और क्या क्या कह रहे हैं, और आपका हाल यह है कि ला अल्लाह का बाख़ियुन नफ्सा का। इतने में अल्लाह कहते हैं आओ मैं तुम्हें मूसा की कहानी सुनाऊँ। अल्लाह गम दूर करते हैं नबी के कि क्या हुआ आपको, ऐसा हुआ तो देखें आपसे पहले भी तो किसी के साथ ऐसा हो चुका। और इंसानों की अजीब आदत है कि जब अकेला किसी गम का शिकार होता कहता सिर्फ मैं ही क्यों, और चलो भाई दो हो जाएं तो कहते हैं चलो आओ दोनों बैठ के दुख सुख करते हैं। यानी आप चाहते हैं कि आपको जो गम है वो किसी दूसरे को भी हो। किसी ने मुझे कहा ऐसी कोई परेशानी है तो कहने लगी, मैंने कहा आखिर मेरे ही साथ क्यों, मतलब यह है कि दो तीन को हो ताकि तसल्ली आ जाए। लेकिन ये बहरहाल हकीकत है कि इंसान कोई काम अकेला कर रहा हो ना, तो उसको बड़ा रहम आता है अपने ऊपर। सब सो रहे हैं और आप पढ़ रहे हो, तो मेरे वाले जो आंसू गिरते होंगे, हिचकियों से रोएंगे तो दूसरे भी उठ जाएंगे, क्या करें आप सो रहे हैं, हमारा कल टेस्ट है। सब शादी में गए और आप कह रहे हैं नहीं जी मुझे तो पढ़ना है, मैंने असाइनमेंट करनी है। तो कभी कभी ऐसा होता है, अल्लाह के रास्ते में जो बंदा अकेला गम खाता है ना, फिर वो बरकत भी अल्लाह ही के रास्ते से समेटता है। तो आइए ज़रा मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को देखते हैं। व इस नादा रब्बुका मूसा अनेतिल कौमज़्ज़ालिमीन, और याद करो जब निदा दी आपके रब ने मूसा को। कितना प्यारा अंदाज है, कहाँ दी थी? जब मदियन से मिस्र आ रहे थे। व इस नादा रब्बुका मूसा अनेतिल कौमज़्ज़ालिमीन, और याद करो जब निदा दी आपके रब ने मूसा को और फरमाया कि जाओ ज़ालिम लोगों के पास। मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से मिस्र आ रहे थे, बीवी साथ थी, सर्दियों की रात थी, बास कहते हैं कि बीवी उम्मीद से भी थी, और वहाँ दूर मूसा को जो रोशनी दिखी, आग लेने गए तो आवाज़ आ गई कि या मूसा, ए मूसा मैं तुम्हारा रब हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया किधर? अने तिल कौमस ज़ालिमीन, ज़ालिम कौम के पास आइए। या कौमस ज़ालिमीन से कौन मुराद है? फिरौन की कौम के लोग। क्या जुल्म था उसका? आगे बता दिया कौम फिरआउन, यानी फिरौन की कौम के पास। कहना क्या जाके? लंबी तकरीर, घंटों का वास नहीं, सिर्फ दो लफ्ज़ बोल के उनके शऊर को जगा दो कि अला यत्तकून, क्या वो कह रहे इलाही से डरते नहीं हैं? यकीन करें बड़े से बड़ा जालिम हो ना, कोई अल्लाह की किताब का दुश्मन भी हो ना, आप जितने कम लफ्ज़ों में उसको अल्लाह का खौफ दिलाएंगे ना, उतना उसका रंग ज़्यादा पीला होगा। मसला क्या होता है कि हम बिल्कुल न्यू कमर्स को लंबी तकरीरें सुनाने लग जाते हैं, और जिस बंदे ने कभी कोई दीन की बात सुनी नहीं उसको कहते हैं बैठ के मेरा आवाज सुनो क्योंकि मैं बहुत नेक हूँ, मैं कुरान पढ़ के आई हूँ। नहीं, एक जुमला लिख लें, जो लोग दीन से दूर हैं ना उनको लंबी तकरीरें नहीं सुनानी, घंटों के पास नहीं, आधा घंटे का भी नहीं, सिर्फ एक आधा जुमला उचकता हुआ अल्लाह यत्तकून, तुम्हें डर नहीं लगता? यही वो जुमला था जिसने किफल के दिल की हालत बदल दी थी, कि जब एक औरत के साथ बुराई करते हुए वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा था और उसका तो शुआर ही ये था, लेकिन उस औरत ने कहा या किफल इत्तकिल्ला, अल्लाह से डर जा। बस इस जुमले ने किफल के दिल को फाड़ दिया कि मैं अल्लाह से डरूं, और ये तो बेचारी, इसका तो कसूर भी कोई नहीं, इसके बावजूद भी ये इतना डर रही है कि पत्ते की तरह कांप रही है। तो ये अंदाज सीखिए कि कम बात करें उन लोगों से जो भी सुनने के मूड में नहीं, फिर जो आप जैसे बन जाए फिर 4 के 8 घंटे भी पढ़ाएं। कहा क्या डरते नहीं हो, ये कह दो किस बात से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह के बंदों को अपना बंदा बना लिया, गुलाम बना लिया, तुमने चुनी हुई कौम को, अल्लाह के नबियों की नस्ल से आने वाली कौम को तुमने किस तरीके से अपना गुलाम बना लिया। قال ربي اني اخاف ان يكذبون, موسی علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی, یہ موسی ڈرنے لگے کیا وہ مجھے جھٹلا دیں گے؟ ویزیق صدری, اور گھٹتا ہے میرا سینہ۔ یہ جو لفظ ہے نا یزیق, یہ زاق یزیق سے ہوتا ہے, نفسیاتی گھٹن کو کہتے ہیں, سائیکلوجیکل ڈپریشن۔ ایک تو ہے نا جگہ کی تنگی کی گھٹن, مثلاً نہ آپ چھوٹی سی جگہ میں اپنی انگلی ڈالے, وہ گھٹن نہیں ہوتی ہے, یہ نفسیاتی گھٹن۔ جیسے بعض لوگوں کو فوبیا ہوتا ہے, لفٹ میں نہیں بیٹھ سکتے, جہاز میں نہیں بیٹھ سکتے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میرا سینہ گھٹتا ہے۔ تبھی تو سورۃ طٰہٰ میں دعا پڑھائی گئی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہاں انہوں نے اعتراض کیا, اپنی وجہ بتائی, بیماری بتائی, تو سورۃ طٰہٰ میں وہ دعا اللہ نے سکھا دی کہ یہ دعا پڑھو, کیونکہ یہ کہہ چکے تھے کہ ولا ینطلق لسانی, اور میری زبان بھی نہیں چلتی, لہٰذا فارسل الی ہارون, پس آپ بھیج دیجئے وہی ہارون کی طرف۔ فارسل, پس بھیج دیں, کس کو؟ وہی کو۔ الی ہارون, ہارون کی طرف, یعنی میری بجائے وہی ہارون کی طرف بھیج دیں۔ اور ایک چوتھی وجہ بھی ہے, وہ کیا؟ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ, اور تو جانتا ہے کہ ان کا میرے ذمے ایک جرم بھی ہے۔ فخاف وان یقتلون، کہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں. کون سا گناہ یاد تھا؟ جو مکہ مارا وہ شخص مر گیا. زنبن کا لفظ عربی زبان میں دو تین مختلف معنوں میں آتا ہے. اس کا ایک معنی ہوتا ہے دم، ٹیل کے معنوں میں. گناہ کو بیسیکلی کہتے ہیں نا ذنوب، اسی کی جمع ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا. تو دم کی طرح گناہ بھی ہمارے ساتھ لگے ہی رہتے ہیں. اسی طرح ذنب کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز ایڈ کرنا، اضافہ کرنا. گناہ بھی اصل میں ہمارے نام اعمال میں اضافے ہی ہوتے ہیں، ضرورت کوئی نہیں ہوتی ان کی لیکن ہم کر لیتے ہیں. اسی طرح اس کا تیسرا معنی کیا ہے؟ الزام، بلیم کے معنوں میں. تو یہاں مراد ہے وہی کہ جو میں نے یہ قتل کیا تھا اس کے بارے میں اشارہ کر دیا کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں. قالا، فرمایا اللہ نے، کلا، ہرگز نہیں. کیا مطلب؟ کہ وہ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے. فذهبا، اکیلے نہیں بلکہ آپ دونوں ہی چلے جائیں. آپ نے فرمائش کی کہ ہارون نبی بن جائے، تو اس فرمائش کے نتیجے میں آپ کو نہیں الگ کر دیا بلکہ آپ کے ساتھ ہارون بھی اب جائیں گے. کیسے جاؤ؟ بی آیاتینا، ہماری آیتوں کے ساتھ. جی کون سی آیتیں دیے گئے تھے؟ وہ کتنی آیتیں تھیں؟ کون بتائے گا؟ یہ تورات کی آیتیں تو نہیں تھیں؟ چلے الحمدللہ، اتنا سبق یاد ہے. جی یہاں بی آیاتینا سے مراد جد بیضہ اور عصا کا سام بننا تھا. انا معکم مستمعون، بے شک میں تم سب کے ساتھ ہوں سننے والا. مستمعون، غور سے سننے والا، یعنی کہ تم جاؤ اور میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری ہر بات کو سننے والا، تمہارے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا حالات ہیں. یہاں تک بات پوری ہوئی جو موسیٰ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات تھی. ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیچھے پڑ چکے. اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون ہی کے گھر میں پالا. روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے بڑے، وہیں رہتے تھے، وہی پہنتے تھے جو فرعون پہنتا تھا. پھر جب بڑے ہوئے تو ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز کو دیکھ کر فرعون ان کو مختلف مہموں میں بھیجا کرتا تھا، جیسے بادشاہوں کی ہوتی ہیں. جنوبی سوڈان کی طرف کہتے ہیں کہ ایک مہم لے کر گئے یہ فرعون کے لیے، پھر وہاں سے واپس آئے کامیابیوں کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں بھی چرائیں. جب فطرت کی تعلیم پوری ہو گئی پھر نبوت کا سلسلہ شروع ہوا. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اپنے کام کا بناتا ہے نا، تو اس سے پہلے مختلف مراحل سے گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی حالات کے بیلنوں میں ڈال دیتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو اس لیے لاتا ہے. اب ان آیات کو پڑھ کے کسی کے ذہن میں آئے، ہائے موسیٰ ڈر رہے تھے، ذمہ داریوں سے بھاگ رہے تھے، اس لیے کہا کہ ہارون کو بھیج دیں مجھے نہیں، تو بات یہ نہیں ہے. یہ بالکل دکھ سکھ ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ کہتی ہیں میں تو اکٹھے پانچ پاروں کا ٹیسٹ نہیں دے سکتی، امپاسیبل ہے، میرے لیے تو ممکن نہیں ہے. پھر آپ کی دوست کیا کہتی ہے؟ نہیں نہیں کوشش کرو، ہو جائے گا، ممکن ہے، کرو گی تو صحیح. اچھا کر لوں گی، چلو ٹھیک ہے چلو. آپ کہتے ہیں نہیں نہیں میرے سے نہیں پڑھا جاتا، نہیں بس اب میں ٹیسٹ نہیں دیا کروں گی. تو دوسرا کیا کہتا ہے آپ کو؟ نہیں نہیں تم کر لو گی. بالکل اسی طرح کی تسلیاں ہیں اللہ کی موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ آپ فکر نہ کریں، سب کچھ ملے گا، آپ کا کام کوشش کرنا ہے، آپ کوشش کریں، ہم آپ کی زبان کو بھی کھول دیں گے. آپ دیکھیں اس کی پوری ڈیٹیل صورت توحہ میں گزری. یہاں آپ فیل کریں گے کہ انہی واقعات کو مختصراً پیش کیا جا رہا ہے. پھر اگلی بات، اس آیت میں ایک اور چیز دیکھیے گا کہ اللہ کی بات کو آگے پہنچانا یہ کیسے آسان ہوتا ہے، کیونکہ یہاں بات اللہ کی بندوں تک پہنچانی تھی. موسیٰ اس بات سے گھبرا رہے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ گھبراہٹ ہر بندے کو ہونی چاہیے. آپ کسی کی کوئی بات سنیں، آرام سے سن رہے ہیں، وہ کہنا اچھا یہ بات اب جا کے اندر بتا دیں، تو آپ کہتے ہیں کیا کہا، ذرا پھر کہہ دیں، غلطی نہ کر دوں، فکر ہوتی ہے نا. پھر بھی 19-20 کا فرق ہوتا ہے. لیکن بندہ اللہ کی بات بندوں تک پہنچائے، جہاں یہ آنر بہت بڑا ہے، جہاں یہ اعزاز بہت بڑا ہے، وہاں یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بھی ہے. جو بندہ حقیقت میں اپنے آپ کو اللہ پہ ڈال دیتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بات میں اثر ڈال دیتا ہے. کچھ چیزیں ہم اس میں نوٹ کر سکتے ہیں کہ کیسے اللہ کی بات آگے جائے. پہلی بات تو یاد رکھیں، سورت قیامت میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دی کہ ان علینا جمعہ و بیانہ، اس قرآن کو، اس کلام کو جمع کروانا بھی ہمارا ہی کام ہے اور آگے سے بیان کروانا بھی ہمارا ہی کام ہے. اللہ ہی زبان دے دیتا ہے اپنے کلام کو بیان کرنے کے لیے. جیسے بچہ چلنا چاہتا ہے تو چل ہی پڑتا ہے نا، इसी तरह ये एक ख़ास अल्लाह की रहमत है। आप 10 लोगों की बात सुने, आपको लगेगा कि हर बंदे को अल्लाह ने एक मुख्तलिफ अंदाज़ दिया, मुख्तलिफ सोच दी, मुख्तलिफ बात दी। ये किसी बंदे के अख्तियार में है ही नहीं। जिसको आप कह सकते हैं कि ये कस्बी नहीं, वह भी है, वहाब ने दी, अता कर दी, ये अल्लाह की बात है। लेकिन कुछ चीज़ें मावन भी होती हैं इसमें। मसलन पहली बात यह कि जब कभी लोगों को अल्लाह का पैगाम दें, अपने दिल से बात निकालें। जो बात दिल से निकलती है ना, वो असर रखती है। हम बाहर से फ़र्क हैं शक्लों सूरत के एतबार से, रंग से, ज़ुबानों से, लेकिन फितरत हर बंदे की एक जैसी है, गोरे की, काले की, लंबे की, पतले की, मोटे की। अब जो बात आपके अंदर से निकली ना, वो अगले के भी अंदर जाएगी तो बिल्कुल मैचिंग हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि पर नहीं पर ताकतें परवाज रखती है। अंदर से निकालने के लिए बंदे को अपने ऊपर लेना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी है। बस वह लोग क्या करते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं और उसको लिखते हैं और आगे पेश कर देते हैं मनोवान। फिर बाद दफ़ा पढ़ने में गलत लिखा गया तो वो गलत ही बोल देते हैं। ये दुरुस्त तरीका नहीं होता। किसी के बोले हुए को सुन के लफ्ज़ बलफ्ज़ सुनाना, बस ऐसे लगता है कि जैसे कोई कह करे और उसको चाट ले। आप देखिए, खाना जो फ़ौरन खाते ही कह कर देते हैं आप, उसमें बदबू होती है। लेकिन वही खाना जब जज्ब हो के आपके जिस्म से निकलता है तो एनर्जी देता है, ताकत देता है, फिर उससे आपको बहुत सारी फ़ायदे भी मिलते हैं। बिल्कुल कोई बात सुने, आप कहीं से पढ़ें, सीखें, पहले उसको अपने ऊपर लें, आप फील करें, उसको अपने जिस्म के ऊपर लाएं, आप देखेंगे कि वही चीज़ आगे जाएगी। फिर एक दूसरी जो बहुत ही ज़रूरी नसीहत है इस मामले में, वो क्या है कि असल टेक्स्ट के करीब रहें। जब हम कुरान के असल से दूर भागते हैं ना, दूर की कौड़ियाँ लाकर, कहीं उसमें फ़लसफ़ा, कहीं उसमें साइकोलॉजी, कहीं उसमें इधर की बातें, एक बात शुरू की इधर से और ख़त्म हुई भैंसों पे, वो चीज़ बंदे को कुरान के असर से दूर कर देती है। उसी की बात में असर होगा जो कुरान के टेक्स्ट के साथ रहेगा। इवन आप कुरान सामने खोल लेना तो आप फील करें ना कि हम आयत तो पढ़ रहे थे, वो यज़ीक़ु सदरी वला यन्तलिक़ु लिसानी फ़ारसिल हारूना। अब अगर इसमें मैं आपको बताऊं कि देखें, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की इस रिक्वेस्ट के जवाब में उनको सिखाया कि रब इशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फिर अब मैंने कोट कर दी ना, अब मुझे रुक जाना चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा अंदाज़ मैंने देखा है लोगों का, वो रब इशरहली शुरू हुआ ना तो उस पर बातें शुरू हो गई, फिर ज़ुबान पर बात हुई, फिर कहा अच्छा बकरे की ज़ुबान कभी खाई है आपने, फिर सिरी पाए खाए हैं आपने, अच्छा बड़े मज़े के होते हैं। होती बातें दीन के नाते से, लेकिन वो पता नहीं वो पहुँच के आधा घंटा दूर जा चुके होते हैं, वो कहाँ कहाँ के वाक़यात, फिर कहते हैं वो चले अब वक्त तो ख़त्म हो गया, आयत कल करेंगे। ये दुरुस्त अंदाज नहीं होता। आप जब कुरान की तफसीर करने बैठें, बिल्कुल 19-20 का इधर उधर ना हो, स्टेयरिंग पे आपका हाथ हो, ब्रेक पे आपके पाँव, आपको पता लग जाए कहाँ करना है। हाँ आप कहते हैं कभी कभी एक आयत की हम दो दो घंटे भी तफसीर करते हैं, क्या करते हैं, उसी के अंदर रहते हैं या बाहर चले जाते हैं। कोशिश करें, यानी ऐसे फील होता है कि आपके हाथ में स्टेयरिंग है और आपने लेन से बाहर नहीं निकलना जो आपके दो तरफ खींच दी गई है, वरना असल ख़त्म होता है। मसलन देखिए कि एक खाना पकाते हैं ना तो असल खाने का टेस्ट आना चाहिए ना। मसलन आपने कोई सब्ज़ी पका ली, कद्दू गोश्त, अब कद्दू में कद्दू का टेस्ट आएगा, लेकिन आप उसमें 6 चम्मच मिर्चों के डाल दें, 10 टमाटर डाल दें, दही डाल दें, उसमें कर दें और बाद में पूछें जानू बूझो तो सही ये क्या था, तो नहीं समझ आएगी ना। आप पकाएं दाल का हलवा और गाजर का हलवा और उसमें खोए और बादाम और क्या का डाल के फिर के अब बूझ के बताओ भला ये है क्या, भला वो टॉफ़ी बन चुकी होगी, वो हलवा नहीं होगा। तो असल टेस्ट आने दें, कुरान का असल टेस्ट आता है, अल्लाह की बात खुद बहुत लोगों के दिलों में जाती है। फिर इससे आप देखिए एक साइड पॉइंट कि मूसा अलैहिस्सलाम का दिल मुतसब नहीं था। आपने ये नहीं सोचा कि जो नेमत मुझे अल्लाह ने दी है वो मेरे भाई को ना मिले। ये है वो वुसअत कल्बी जिसकी वजह से अल्लाह ताला बंदे की बात में असर डाल देता है। दीन पे किसी की मोनोपोली नहीं चल सकती। दीन को पहुंचाने के लिए अगर कोई ये सोच लेना कि जो एक बंदे ने कह दी है बात, अब दूसरा कोई पैदा ही नहीं हो सकता ऐसी बात कहने का, लिहाजा यही बात आप पहुँचाएंगे, इसी लफ्ज़ को पहुँचाएंगे तो ये दीन है। और कोई दूसरा कहे कि नहीं मैं हालात के मुताबिक अपनी अल्लाह की दी हुई स्किल्स के मुताबिक इसको ले लेता हूँ तो मैं भी कर लूँ, वो कहेंगे नहीं फिर ये आपकी मर्ज़ी है, ये चीज़ हम दीन नहीं कहते। ये भी दुरुस्त तरीका नहीं होता। वफ़ौका कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला होता है। तो तासुब से पाक दिल वाले लोग अल्लाह की बात को ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। अब आगे देखिए कि मूसा और हारून कहाँ पहुँचे हुए हैं, फिरौन के दरबार में। हम होते तो इस कहानी के बाद क्या कहते? फिर मूसा यहाँ से उठे, कांपते दिल से अब वापस गए। फिर बीवी ने कहा, क्या हुआ बेगम, बस क्या बताऊँ, फिर बातें हुई कहा चलो फिर अब उठो चलते हैं। फिर हम कहानियाँ जोड़ने लगते हैं। कुरान कितना प्यारा है, मुस्तमेउन, हम सुन रहे हैं तुम्हारी बातें। यहाँ फिर बात थोड़ी रह गई, इन्ना माकुम में फिर लिख लें। ये जुमले मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि ये आपका अकीदा आपके दिल में रासिख हो जाए कि अल्लाह का किसी बंदे के साथ होना कैसे है, वजूद के साथ नहीं। जहाँ कहीं अल्लाह ताला कहते हैं इन्नी माकुम या इन्ना माकुम, इससे मुराद है कि इल्म के एतबार से, तुम्हें सुनने के नाते से, तुम्हारी मुश्किलात में मदद करने, तुम्हारी दुआओं को सुनने से, वरना वजूद के एतबार से अल्लाह की ज़ात साथ में आसमान पे, हमारा इस पर ईमान है। अब दूसरा मंजर है अब कहानी का, तसव्वुर में लाइए, वहाँ तक ही पढ़ूंगी जहाँ तक एक मंजर इकट्ठा है, फिर आखिर में थोड़ी बात कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि कहानी को पढ़ने का यही अंदाज होना चाहिए कि कहानी का तोड़ बीच में ना टूटे। कहा, फरमाया अल्लाह सुब्हान तआला ने, फातिया फिरऔन फकूला इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन। सो दोनों जाओ फिरौन के पास और इसे कहो कि हम भेजे हुए हैं रब्बुल आलमीन के। ये जो लफ्ज़ है ना फातिया, इसके आगे नून भी था, फातियानी क्या होगा, यानी तस्निया होगा ना, तो नून गिर गया इसमें से। जाओ तुम दोनों फिरौन के पास, यानी अल्लाह ताला ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, आप जाइए, हम आपके साथ देंगे, कोई मुश्किल आई तो इंशाल्लाह हम आपकी मदद करेंगे, आप जाइए। और जाके कहना कि मैं किस गिरोह से हूँ, किस स्कूल से हूँ, किस इदारे से, नहीं रसूल रब्बिल आलमीन। कितना प्यारा तारुफ है, आप कौन है जी, अल्लाह के नुमाइंदे हैं, अल्लाह की बात पेश कर रहे हैं, अल्लाह की ज़ात जो है वो जो कहती है वही करने वाले हैं। लिहाजा यहाँ फिर एक अमल का नुक्ता नोट कर लीजिए कि दूसरी तीसरी नस्बतों की बजाय सीधी नस्बत अल्लाह ताला से जोड़ लें कि जी हम अल्लाह का पैगाम देने वाले हैं। अन अरसिल माना बनी इसराइल, कि भेज दीजिए बनी इसराइल को हमारे साथ। क्या पता चला, टू दी पॉइंट बात, इधर की उधर की, ये नहीं वो नहीं, ये कर दें वो कर दें, जाते ही अपना मकसद बयान करो कि देखो भाई हम करने के आए हैं कि फिरौन को कह दो कि इन बंदों को गुलामी से निकाल दो। इससे भी क्या पता चलता है कि बहुत उलझाना नहीं चाहिए। बस लोगों की आधी स्पीच ख़त्म भी हो जाती है, पता ही नहीं चलता टॉपिक क्या है, ये दुरुस्त तरीका नहीं। बिल्कुल सीधी बात, अनर सिलमाना बनी इसराइल, वह सीधी सी बात है, हम ये कहने आए हैं कि बनी इसराइल को निकाल दो। अब यहाँ से फिरौन का और मूसा का मुकालमा, قال الم نربك فينا وليدا। फिरौन ने यह सुनकर कहा, मूसा क्या हमने तुझे पाला ना था जबकि तू एक बचुंगड़ा था, ولبست فينا من عمرك سنين, और जबकि तूने बसर किए हमारे पास अपनी उम्र के कई साल। यहाँ लफ्ज़ देखिए नुरबी का, रब्बा युरबी तरबियत का लफ्ज़ इसी से है, पालने के मानों में आया। या वलीदन जो लफ्ज़ है ना, ये वलदुन से तस्गीर है, तस्गीर कहते हैं छोटा करना। उर्दू में भी हम बोलते हैं, बच्चा होते तो हम कहते हैं बचुंगड़ा, कोई बेटा है तो कहेंगे बेटा को कहते हैं बिटिया, तो हर ज़ुबान में जो होता है, ये मोहब्बत के लिए भी होता है बाज़ दफ़ा, और बाज़ दफ़ा दूसरों को छोटा करने के लिए भी होता है। फिरौन ने अपना आप खोल दिया। यहाँ से आप अगर एक छोटा सा टॉपिक लिख लें कि कम ज़र्फ़ इंसान को जब नसीहत की जाए तो उसका क्या रिएक्शन होता है, फिरौन की छिछोरी गुफ्तगू से हमें दिखेगी ये बात कि जब मूसा ने जाके पैगाम दिया तो कहने का, अच्छा जी ये तुम हमारे ही टुकड़ों पे पले हुए हो ना, वही हो ना जो कल तक हमारे घर में थे और हमारे अंदर एक बड़ी उम्र रहे, और उसके बाद वफाल तफालत कल्लती फालता, और फिर तूने इर्तकाब किया उस फेल का जिसका तूने इर्तकाब किया, यानी तू कर गया अपना काम, फिर रहा हमारे घर टुकड़ों पर हमारे पला, और जाते जाते तू हाथ साफ कर गया हम पर, वान तमिनल काफिरीन, और तू बड़ा ना शुक्र है। अब यहाँ कौन सा लफ्ज़ है काफिर, कोई अल्लाह के लिए कुफर की बात हो रही है, लिटरल मानो में ना शुक्रा, तू बड़ा ना शुक्र है, बड़ा नमक खराम है, और तूने हमारी कदर नहीं की, हमने तुझे जो कहा था वो चीज़ दुरुस्त नहीं। इशारा वही है जो किप्ती को कत्ल किया था या कत्ल हो गया था किप्ती हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से, तो उसी की बात करके इसने दाने देने शुरू कर दिए। काला, अब मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल नहीं घबराए, कोई शर्म नहीं आई, कोई झूठी इज्जत नहीं बनाई, बल्कि कहा, हाँ फालतूहा मैंने किया था इसको। हाँ की ज़मीर किसकी तरफ है, फेल की तरफ, पीछे जो फाल तफाल तक, हाँ मैंने किया था वो फेल यानी कत्ल, लेकिन क्यों किया था? इज़म व अना मिनद्दालीन, क्योंकि उस वक़्त मैं भटके हुओं में से था, नावाकिफ था। कौन सा भटकना था? दालीन का लफ्ज़ यहाँ अगर आप देख लें तो बाज़ लोगों ने इसको फिरौन का कॉल कहा है और बाज़ ने मूसा का, मतलब बाज़ कहते हैं कि यहाँ मिनत दालीन में इशारा फिरौन की तरफ है और बाज़ कहते हैं मूसा की तरफ। फिरौन के लिए हो तो दालीन से मतलब क्या था कि कल तक तुम्हारे पास इल्म नहीं था, अब मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ, लिहाजा अपनी इज्जत छोड़ो, संभल जाओ और हिदायत की तरफ आ जाओ। और अगर यहाँ मूसा अलैहि सलाम के लिए ये लफ्ज़ समझें तो पहली बात है कि ये अल्लाह ने लिखा है, हम तो मूसा को कभी नहीं कह सकते वो भटके हुए थे। लेकिन बास दफ़ा कुरान पाक में ऐसे लफ्ज़ आ जाते हैं कि जिसमें नबियों के लिए ज़रा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसकी चंद वजूहात होती हैं। पहली वजह ये होती है कि अल्लाह ताला रसूलों का बशर होना साबित करते हैं, ह्यूमन एलिमेंट था उनके अंदर, थे वो मूसा लेकिन इंसान भी थे। फिर दूसरी बात, अल्लाह ताला इसके ज़रिए से लोगों के अकायद की इस्लाह फरमाते हैं कि देखो नबी देवता नहीं है, नबी फरिश्ता नहीं है, नबी पूजा के लिए नहीं आता, सिर्फ उसके लिए सलाम पढ़ना उसकी तारीफ़ें नहीं करनी चाहिए, बल्कि नबी नमूने के लिए आते हैं। लेकिन बास लोग एहतराम और तज़ीम के लिए नए नए तरीके निकाल लेते हैं, तो लिहाजा अल्लाह ताला ने या मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ये लफ्ज़ रखे। या मूसा अलैहिस्सलाम के उस अमल को भी ज़रा देख लीजिए कि उन्होंने अपनी पिछली चीज़ को छुपाया नहीं, साफ कह दिया हाँ भी नावाकिफ थे। मुबल्लिग के लिए इसमें एक बहुत बड़ा पैगाम है कि अगर कभी पिछली ज़िंदगी में गलतियाँ हो चुकी हैं, वो शरई पाबंदियाँ नहीं थीं, वो दीन पे अमल नहीं था, आज इतराफ़ कर लें। होता क्या है कि जब दीन की दावत देने वाला अपने आप को सुपर ह्यूमन पेश करता है, हम तो जद्दी पुश्ती ख़ानदानी इल्म वाले लोग हैं, हमने तो कभी गुनाह का नाम भी नहीं चखा, ये चीज़ बल्कि उसकी इज़्ज़त को कम करती है। जितना आप अपनी माजी की बातें कन्फेस करते जाएंगे, हाँ भाई थे आप जैसे, इसके दो तीन फ़ायदे होते हैं। एक तो ये है कि जो सुन रहे होते हैं ना वो आपको अपने ही जैसा समझते हैं, क्योंकि अक्सर अभी उसी फेज़ में होते हैं, वो कहते हैं अच्छा ये बदल सकता है तो मैं भी बदल सकती हूँ। फिर दूसरा एक फ़ायदा ये होता है कि कम्युनिकेशन बनता है ना, जब दीन वाला लोगों को यूं दिखे अपने से 4-6 फुट ऊंचा बैठा हुआ अनअचीवेबल पर्सनैलिटी, और दीन से दूर जो शख्स है वो अपने आप को 2-4 हाथ ज़मीन में धंसा हुआ देखे, तो कम्युनिकेशन गैप बहुत होता है। बेहतरीन मुबल्लिग वो होता है जो अपने आप को ऊपर से नीचे लाए और जो सुनने वाले उनका मोरल बुलंद करे, उनको ऊपर लाए और ईवन पे बात करे, कोई बात नहीं हम भी आप ही जैसे लोग हैं, कभी हम भी ऐसे ही थे, मत सोचें कि हम शुरू से ऐसे हैं, कोई माँ के पेट से नहीं सिखाता, इस तरह के जुमले बोलना चाहिए ताकि जो लोग आ रहे हैं वो गिल्ट से निकले। और अगर ये जुमला तुम जालिम इंसान, ओ काफिर हो, ओ मुनाफिक हो, तो ये चीज़ आने वालों के मोरल को और ज़्यादा डाउन कर देती है। तबलीग के अंदर ये चीज़ बहुत अहम होती है। कुछ लोगों की बात सिर्फ इसलिए नहीं आगे पहुंच सकती कि वो बहुत अपने आप को ऊंचा समझ रहे हैं, और इससे फिर तकब्बुर भी आता है। और आप यहाँ नोट कीजिए कि मूसा कब ये जुमले बोल रहे हैं, मूसा ने तो उस जुमले को कोई अहमियत ही नहीं दी, जो इतना बड़ा उसने ताना दिया कि अच्छा जी तुम हमारे टुकड़ों पर पले हो। या फिर एक गहरा सबक है हम सब के लिए, और वो क्या कि कम ज़र्फ इंसान की आदत होती है कि जब उसको नसीहत की जाए ना तो पहली बात यह है कि वो बात सुनने की बजाय बातें बनाता है। भाई आपको कहा जा रहा है नमाज पढ़ें, आप खिसक जाए वहाँ से ना पढ़ें। जो थोड़े हौसले का बंदा होता है ना, वो ना सिर्फ ये कि पढ़ता नहीं बल्कि आगे से बातें बनाने लगता है, एहसानात का तस्करा शुरू कर देता है, शर्मिंदा करना चाहता है, कभी गुस्सा दिलाता है, कभी उलझना चाहता है, और सबसे बढ़ के पैगाम को छोड़ के पैगाम देने वाले की शख्सियत में खो जाता है। ये चीज़ जो है हमेशा होती है। आप देखें दुनिया में आपको दोनों तरह के लोगों से वास्ता पड़ेगा। कुछ लोग हैं आप उन्हें नेकी की बात करें ना कि अच्छा देखें ये अच्छे काम नहीं है, अच्छे तरीके नहीं है, तो कहेंगे हाँ बस दुआ करें, बस अल्लाह हमें भी हिदायत दे। कोई दूसरे होंगे ना तो वो आगे से कहेंगे तो क्या है आप बताएं, सारे हो गए ऐसे, अच्छा हमें पता है मौलवी कैसे होते हैं, हमें देखे हमें बुरके पहनने वाले कैसे होते हैं, हमें पता है लोग दाढ़ियाँ रख के चोरियाँ करते हैं, और वैसे भी आप देखें कि खाली बर्तन ज़्यादा बजा करते हैं। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो बिल्कुल नहीं उलझ रहे। ये अंदाज़ उसका होता है जो पैगाम देने जाता है। अपने आप को मनवाने नहीं जाता। अगर मूसा सेल्फ कॉन्शियस होते, याद रखिए मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है ना, दीन के काम से पीछे होने वाले लोग 80% सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। मुझे ये कह दिया, मेरे लिए ये सोचा, मुझे पीछे कर दिया, मुझे आगे कर दिया, मुझे हटा दिया, उसको लगा दिया, मेरी मेरी मेरी, मुझे बुरा लगा, मुझे टोंट, इस मैं की वजह से 80% लोग इतने एक्टिव होते हैं दीन के अंदर, किसी भी जगह एकदम पीछे हट जाते हैं। हदीस में आता है कि ईमान वाला अल्लाह की बुरहान के साथ देखता है, उसकी फरासत से डरो। अबू सुफियान ने कहाँ खड़े होके जाके हबशा में कह दिया कि मैं झूठ नहीं बोलता भाई नबी के बारे में, मुझे पता है मैं जो भी कहूँगा कल मैं तारीख में झूठे अबू सुफियान के नाम से लिखा जाऊँगा। हालांकि उस वक्त ये कुफर पे थे, लेकिन वो अल्लाह के नबी के बारे में झूठ बोलते हुए डर रहे थे कि कहीं मेरा नाम तारीख में बुरे लफ्जों में ना आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें अंबिया कराम के किस्से से दिखती हैं।